ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। मॉनसून देशभर में सक्रिय हो चुका है। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने दी जानकारी। बीपी राजमार्ग पर कल से 15 दिनों के लिए रात के समय में यात्रीवाहक वाहन चलाने पर लगी रोक। क्वारको में निर्मित फ्लाईओवर का हुआ उद्घाटन। प्रधानमंत्री ओली ने कहा, बहुआयामिक और चौतरफा विकास को सरकार ने बढ़ाया है आगे। और ईरान और इसराइल के बीच जारी युद्ध का अंत करने के विषय में यूरोपीय विदेश मंत्रियों और ईरानी विदेश मंत्री के बीच जिनेवा में हुई वार्ता। अब समाचार विस्तार से। मॉनसून प्रणाली आज से देशभर में सक्रिय हो गई है। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने आज एक विशेष मौसम बुलेटिन जारी कर बताया कि 23 दिन के बाद मॉनसून पूरे देश में फैला है। मौसमविद प्रतिभा मानंदर ने बताया कि लुम्बिनी, कर्णाली और सुदूर पश्चिम प्रदेशों में आज से मॉनसून फैलने के साथ ही अब पूरे देश में मॉनसून सक्रिय रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत के पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्र में बने न्यूनचापीय क्षेत्र लो प्रेशर एरिया का भी आंशिक प्रभाव रहने की संभावना है। इस वर्ष का मॉनसून जेठ 15 कतिक के दिन देश के पूर्वी भाग से प्रवेश कर कोशी प्रदेश के अधिकांश भूभाग में फैला था। इसके बाद जेठ 29 तक ये मधेश, बागमती और गंडकी प्रदेश के कुछ हिस्सों तथा लुम्बिनी प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों तक विस्तृत हुआ था। बीपी राजमार्ग पर कल से 15 दिनों के लिए शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक यात्रीवाहक वाहन चलाने पर रोक लगा दी गई है। सिंधुली खुरकोट में आज हुई काभरे, सिंधुली और रामेछाप के अंतरजिला सुरक्षा समन्वय समिति की बैठक ने बाढ़ भूस्खलन के जोखिमों को देखते हुए ये फैसला लिया है। बाढ़ व भूस्खलन के जोखिम को देखते हुए कल से पहले चरण में शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक बीपी राजमार्ग अंतर्गत काभरे भंज्यांग से सिंधुली के खुरकोट तक रात के समय में यात्रीवाहक वाहन चलाने पर रोक लगाई गई है। ये बात काभरे के प्रमुख जिला अधिकारी उमेश कुमार ढकाल ने बताई। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि ललितपुर के ग्वारको में नवनिर्मित फ्लाईओवर से ग्वारको और आसपास के क्षेत्रों में होने वाले यातायात जाम की समस्या का समाधान हो जाएगा। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय द्वारा आज आयोजित नवनिर्मित फ्लाईओवर के उद्घाटन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार ने बहुआयामी और चौतरफा विकास को आगे बढ़ाया है। सुनकोशी मरीन डायवर्जन योजना और हुलाकी राजमार्ग से तराई के चेहरे को बदलने व मेची महाकाली का कायाकल्प करने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश ने पूर्वाधार विकास के क्षेत्र में गति पकड़ ली है। काठमांडू चक्रपथ के कलंकी कोटेश्वर खंड में 17,06,00,000 रूपये की लागत में निर्मित ग्वारको फ्लाईओवर नेपाल का पहला फ्लाईओवर है। इसमें कुल 500 मीटर की अप्रोच सड़क है और 35 मीटर स्पैन वाली 4 लेन का पुल बनाया गया है। ग्वारको चौक के ट्रैफिक जाम को दूर करने के लिए विक्रम संवत 2078 से इसका निर्माण शुरू किया गया था। परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देववा ने कहा कि इसराइल और ईरान में विकसित परिस्थिति के अनुसार वहां मौजूद नेपाली नागरिकों की सुरक्षा और उद्धार के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने बताया कि नेपाल लौटने को इच्छुक नागरिकों का उद्धार करने की तैयारी हो रही है। आज परराष्ट्र मंत्रालय में संपन्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन और गृह मंत्रालय की संयुक्त बैठक में मंत्री डॉ राणा ने ये बात बताई। बैठक में श्रम मंत्री शरद सिंह भंडारी ने कहा कि बहरहाल इसराइल जाने की अंतिम तैयारी में रहे नेपालियों को श्रम स्वीकृति न देकर रोक कर रखा गया है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में विनियोजन विधेयक 2082 अंतर्गत मंत्रालयगत शीर्षकों पर विचार विमर्श हुआ। आज की बैठक में संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति और भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय के बीच विभिन्न शीर्षकों पर बहस हुई। बहस के दौरान खर्च कटौती का प्रस्ताव रखते हुए नेकपा माओवादी केंद्र के उप महासचिव शक्ति बहादुर बसनेत ने कहा कि आवश्यकता और औचित्य के आधार पर बजट विनियोजन न होने के कारण निर्माणाधीन बहुवर्षीय परियोजनाओं को पर्याप्त बजट नहीं मिल सका है। इसी तरह विभिन्न सांसदों ने बजट के क्रियान्वयन पर संदेह जाहिर करते हुए विभिन्न सुझाव दिए थे। इससे पूर्व प्रतिनिधि सभा बैठक में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसदों का अवरोध बरकरार होने के कारण सभामुख देवराज घिमिरे ने संसद में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा सांसदों के सवालों के जवाब दिए जाने को कार्यसूची से हटाए जाने की घोषणा की थी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G थिजियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्य आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार.
अब बाकी समाचार. प्रमुख तीन राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं ने आज संक्रमणकालीन न्याय से जुड़ी प्रक्रियाओं की समीक्षा की. प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंह दरबार में आज हुई बैठक में संक्रमणकालीन न्याय के क्रियान्वयन के लिए गठित आयोगों द्वारा शुरू किए गए कार्यों पर चर्चा हुई. बैठक के बाद नेकपा एमाले के नेता अग्नि खरेल ने बताया कि चूंकि आयोगों ने अपना काम शुरू कर दिया है इसलिए इससे सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है. बैठक में शीर्ष नेताओं ने संक्रमणकालीन न्याय के क्रियान्वयन के लिए गठित आयोग की प्रगति और हाल के बजट में इस विषय पर की गई प्रतिबद्धता पर विचार विमर्श किया. सरकार ने आगामी आर्थिक वर्ष के बजट में संक्रमणकालीन न्याय से जुड़े कार्यों के लिए 1 अरब रुपए का बजट आवंटित किया है. बैठक में प्रधानमंत्री एवं हिमालय के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देवा, नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सहित तीनों दलों के शीर्ष नेतागण सहभागी थे. जबरन गुम किए गए व्यक्तियों की जांच के लिए गठित आयोग ने आज द्वंद्व पीड़ितों के सुझाव लिए. जांच आयोग ने संक्रमणकालीन न्याय में पीड़ितों और सरोकार वालों के सवालों पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में सशस्त्र संघर्ष के दौरान राज्य पक्ष और विद्रोही पक्ष से प्रभावित परिवारों के सदस्यों से सुझाव लिए. कार्यशाला में संघर्ष प्रभावितों ने कहा कि सशस्त्र द्वंद्व के दौरान हत्या किए गए और जबरन गुम किए गए व्यक्तियों के परिजनों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए. संघर्ष प्रभावितों ने कहा कि राज्य द्वारा जारी पहचान पत्र के कारण वे बार बार पीड़ित हो रहे हैं. उन्होंने अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी की. मौके पर आयोग के अध्यक्ष लीला देवी गर्तौला ने स्पष्ट किया कि पीड़ित केंद्रित न्याय प्रणाली के आधार पर जांच होगी और उन्होंने विश्वास जताया कि पीड़ितों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए बिना संघर्ष के मामलों का समाधान किया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि आयोग 7 प्रदेशों के विभिन्न स्थानीय तहों में जाकर पीड़ितों के सुझाव एकत्र करेगा. ड्यूटी में हुई जीप दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए. दीपायल से महुआ की ओर जा रही जीप आज दोपहर आदर्श गांवपालिका के धौला माटी में घुमाव पर अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 250 मीटर नीचे गिर गई. ये जानकारी पुलिस ने दी. दुर्घटना में सायल गांवपालिका 4 सुंड की 41 वर्षीय देवी विश्वकर्मा, जीप चालक आदर्श गांवपालिका 7 दड़ीमाना के 27 वर्षीय सुरेश कार्की और सायल गांवपालिका 6 कटवाल गांव की 35 वर्षीय काली कटवाल की मौत हो गई. प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के रिक्त 2 स्थानों, राष्ट्रीय सभा में आगामी फागुन 20 के रिक्त होने वाले 18 स्थानों समेत स्थानीय तहों के रिक्त स्थानों पर चुनाव कराने के संबंध में निर्वाचन आयोग ने आज प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से परामर्श किया है. प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंह दरबार में प्रधानमंत्री ओली से मुलाकात कर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भंडारी सहित के आयुक्तों ने रिक्त जनप्रतिनिधि पदों के लिए चुनाव कराने संबंध में विचार विमर्श किया. प्रतिनिधि सभा रूपंदेही क्षेत्र नंबर 3 और गंडकी प्रदेश सभा मनांग क्षेत्र नंबर 1-2 की खाली सीटों पर आगामी कार्तिक के दूसरे हफ्ते में चुनाव कराने के हिसाब से नेपाल सरकार के परामर्श पर इसी आषाढ़ के 16 गते के अंदर तिथि तय करने की तैयारी आयोग की है. बैठक में प्रधानमंत्री ओली ने चुनाव के लिए आयोग की तैयारी के अनुसार आवश्यक सहजीकरण में नेपाल सरकार की ओर से सहयोग प्राप्त होने का विश्वास दिलाया. अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार. यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों और ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन के बीच ईरान इसराइल के बीच चल रहे तनाव को कम करने और संघर्ष को समाप्त करने के लिए आज जिनेवा में महत्वपूर्ण वार्ता हुई. यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल ने ईरान से इसराइल के साथ तनाव कम करने और हिंसा को रोकने का आग्रह किया. दोनों पक्षों ने कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से संघर्ष को सुलझाने पर जोर दिया. यूरोपीय संघ ने मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला. ईरानी विदेश मंत्री ने इसराइल द्वारा ईरानी हितों को निशाना बनाने की नीति पर अपनी चिंताएं व्यक्त कीं. पिछले कुछ महीनों से ईरान और इसराइल के बीच तनाव बढ़ा हुआ है, जिसमें हमलों और प्रतिहमलों की घटनाएं शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस संघर्ष को रोकने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। यूरोपीय संघ ने संघर्ष को शांत करने के लिए एक बहुपक्षीय दृष्टिकोण अपनाने की बात कही है, जबकि ईरान ने स्पष्ट किया है कि वो अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। इस बैठक के परिणाम स्वरूप आने वाले दिनों में और कूटनीतिक प्रयासों की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर अब दोनों देशों की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। गजा में एक सहायता वितरण स्थल पर जुटी एक भीड़ पर इसराइली सेना ने गोलीबारी की है। चिकित्सकों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि इस गोलीबारी में 23 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों और चिकित्सकों ने बताया कि मध्य गजा में अमेरिका और इसराइल समर्थित गजा मानवीय फाउंडेशन GHF द्वारा संचालित सहायता वितरण केंद्र के निकट हजारों लोगों पर टैंकों और ड्रोनों से गोलीबारी की गई। नुसरत के अल अवदा अस्पताल के प्रवक्ता ने पुष्टि की कि 23 शव और 100 से ज्यादा घायल लोगों को वहां लाया गया है। बीबीसी के मुताबिक अस्पताल से मिली तस्वीरों में शव फर्श पर पड़े हुए दिखाई दे रहे थे। इसराइली सेना की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई है। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मई के अंत से अब तक इसी तरह की घटनाओं में 400 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इसके अलावा एक अलग हमले में फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट के एक चिकित्सक ने बताया कि डेर अल बलाह के पश्चिम में अलमसार क्षेत्र में एक घर को निशाना बनाकर किए गए इसराइली हवाई हमले में 11 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और अन्य घायल हो गए। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मॉनसून देशभर में सक्रिय हो चुका है। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने दी जानकारी। बीपी राजमार्ग पर कल से 15 दिनों के लिए रात के समय में यात्रीवाहक वाहन चलाने पर लगी रोक। ग्वारको में निर्मित फ्लाईओवर का हुआ उद्घाटन। प्रधानमंत्री ओली ने कहा, बहुआयामिक और चौतरफा विकास को सरकार ने बढ़ाया है आगे। और ईरान और इसराइल के बीच जारी युद्ध का अंत करने के विषय में यूरोपीय विदेश मंत्रियों और ईरानी विदेश मंत्री के बीच जिनेवा में हुई वार्ता। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।